ओम शांति। हम सबके बीच ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा बहन जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनका इस योग तपस्या मौन भट्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप मधुबन में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपके नाम के साथ जनरली पहचान देनी हो तो कहा जाता है उषा बहन SML, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्सेज जब से भारत में प्रारंभ हुए तब से लेकर के आपका उसमें की रोल रहा है, और देश और विदेश की बहुत सारी इंडस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट स्टाफ होता है उसके लिए, उनको ये मैनेजमेंट के कोर्सेज कराने के लिए आपको अक्सर इनवाइट करती रही हैं और करती रहती हैं। उनमें से मुख्य जनरल इलेक्ट्रिकल्स हांगकांग, थाई रैन कंपनी थाईलैंड, पैन एडिबल ऑयल्स मलेशिया, इसको गोदरेज, अमूल, BSNL, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको करती रही हैं और अभी भी करती रहती हैं, जहां आप ये सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज कैसे स्पिरिचुअली और मैनेजमेंट का क्या ब्लेंड है उसको लेते हुए आप उनको वो कोर्सेज कराते हैं, और सभी को बहुत ही पसंद आते हैं आपके कोर्सेज। आपने थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस में दिए हैं अभी तक, और आगे भी आप देते रहे हैं। 1980 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरी सेवा में समर्पित किया, और 1992 तक आपने मुंबई और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दी। अनेक महत्वपूर्ण संस्था के जो प्रोग्राम्स रहे हैं, जैसे 1985 में एक बहुत ही सुंदर बम्बई से लेकर दिल्ली तक एक पद यात्रा निकली थी, उसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। और दूसरी बात, अभी कुछ ही वर्षों पहले आपने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण इसके बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशंस तैयार किए हैं, जो वर्ल्ड में अपने आप में एक अनोखा और पहला प्रयास है, जो देश विदेश में आप उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं। तो ऐसी प्रतिभाशाली हमारी उषा बहन, जो यहाँ हमारे राजयोग शिविर हो, चाहे हमारी कुमारियों की ट्रेनिंग्स हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, चाहे अन्य कोई प्रोग्राम्स हो जो मधुबन में होते हैं, तो आप अनेक विषयों पर स्पष्टीकरण करते हैं। तो हम उनको आज निवेदन करते हैं कि योगी जीवन की बुनियाद, जिसे हम कहते हैं अविनाशी निश्चय, जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि कभी निश्चय न होने के कारण निश्चय डगमग हो जाता है, जिसको बाबा ने कहा था कि यहाँ संगम पर भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो वो ना छूटे और वो निश्चय सदा अविनाशी बना रहे, तो उस पर आप अपना अपना स्पष्टीकरण, अपने अनुभव युक्त बोल हम सबको सुनाए। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी, ओम शांति।
बाप दादा ने समय प्रति समय हम सभी के प्रति जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, उनमें विशेष बाबा का भाव यही होता कि मेरा हर बच्चा निश्चय बुद्धि बने। बाबा ने निश्चय का फाउंडेशन हमारा पक्का किया भी है, और उसके बावजूद भी समय अनुसार साकार मुरलियों में चाहे अव्यक्त मुरलियों में भी इसी फाउंडेशन को पक्का करने के लिए इशारा देते हैं, क्योंकि माया को भी पता है कि जब अगर इनका निश्चय का फाउंडेशन हिलता है तो उसको अपने तरफ खींचना आसान हो जाता है। इसलिए उनका वार भी हमेशा बच्चों के निश्चय पर ही होता है। कई बार ऐसे दृश्य दिखा देते, कई बार ऐसी बातें सुना देते हैं कि कहीं न कहीं निश्चय हिल जाए, और निश्चय की ही अग्नि परीक्षा होती है। चाहे ब्रह्मा बाबा से लेकर के माला का अंतिम दाना, 33वां करोड़ त्रेता युग की अंतिम जो आत्मा है, उन सब के लिए निश्चय के पेपर समय प्रति समय आते रहते हैं, और अंत तक भी यही पेपर आना है। लास्ट मौका भी माया छोड़ेगी नहीं, और इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपनी छोटे से छोटी कमजोरी को भी ये मत समझना कि ये छोटी है, आगे चल करके ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी सी कमजोरी ही आज आने वाले समय में आपके निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने के निमित्त बन जाएगी। इसीलिए यही कहा गया कि निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन निश्चय बुद्धि बनने का सबसे पहला आधार क्या है? निश्चय बुद्धि बनने का सबसे पहला आधार है स्वच्छ बुद्धि। बुद्धि के अंदर थोड़ा भी अगर अस्वच्छता होगी, वही डाउट्स क्रिएट करेगी। ऐसा होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे ही ये दुविधा वाला संकल्प आया, ये निश्चय हिला। इसलिए बुद्धि जितनी स्वच्छ और साफ होगी, यानी क्लैरिटी होगी उसके अंदर, तो निश्चय का फाउंडेशन कभी हिल नहीं सकता है। तो ये प्रथम आधार है, और ये भी हम सभी बच्चे जानते हैं कि बाबा ने जब भी निश्चय के बातें सुनाई तो कभी भी बाबा निश्चय माना एक बात के लिए फोकस नहीं रहता है। निश्चय की बातें जब भी आती है तो चार प्रकार का निश्चय जरूर बताते हैं। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और परिवार में निश्चय। ये चार निश्चय, ये जैसे ब्राह्मण जीवन के लिए या योगी जीवन के लिए एक पिलर्स है, जिस पर योगी जीवन का आसन है। इसमें कोई भी पिलर अगर हिला या थोड़ा उसकी साइज छोटी भी हुई, कि बाकी तीन में है, एक में ही नहीं है ना, तो भी आसन क्या होगा? डावाडोल होने लगेगा। इसीलिए चारों पिल्लर संपूर्ण निश्चय बुद्धि वाले होने चाहिए। स्वयं में निश्चय माना क्या? स्वयं में निश्चय तभी हमारा होगा जब आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होता है। अगर थोड़ा भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मानो ड्रामा आपके सामने कोई सेवा लेकर के आई और उस समय हमने मना कर दिया कि ये तो मेरे से नहीं होगा, सोचने की बात है कि जब हम ये कहते हैं ये तो मेरे से नहीं होगा, तो क्या ड्रामा को पता नहीं था कि मुझसे होने वाला है नहीं होने वाला है? हो सकता है बाबा को भी पता है कि हाँ इसमें ये शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रामा हमारे सामने जब वो बात ले आती है, वो सेवा ले आती है, तो उसमें हमें वो वरदान के रूप में गिफ्ट देने के लिए वो सेवा मेरे सामने आई है। और जैसे ही हम उसको ना करते हैं, माना हमने अपने भाग्य के दरवाजे को बंद कर दिया सदा के लिए। जो भगवान मुझे देना चाहता था वरदान, कोई न कोई विशेषता का वरदान देना चाहते थे, मैंने अज्ञानता के कारण कह दिया नहीं मेरे से नहीं होगा, तो उस सेवा के माध्यम से जो भाग्य का दरवाजा खुलना था उसको क्या कर दिया हमने? सदा के लिए बंद कर दिया। और जैसे ही वो दरवाजा बंद हो गया तो वो सेवा किसी और के पास चली जाती, माना वो विशेषता का वरदान किसी और को प्राप्त हो जाता है। और जब किसी और के पास चला जाता और उसके बाद हम देखते हैं इतना सहज था, अरे ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना ही करना था ना, ये तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन अब क्या? जब हमने मना किया उस समय निश्चय बुद्धि कहेंगे, न स्वयं में निश्चय है, यानी अपनी शक्ति पर क्षमता पर निश्चय नहीं है, न बाबा में निश्चय है, बाबा में भी निश्चय नहीं कहेंगे, निश्चय होता था तो ना करते ही नहीं थे, न ड्रामा में निश्चय है, न परिवार में निश्चय है। पता नहीं परिवार वाले भी मुझे करने देते थे या नहीं, तो चारों में निश्चय नहीं है। जैसे मम्मा की बातें, बाबा की बातें जब दादियां सुनाती है तो उसमें ये चीज बहुत स्पष्ट झलकती है कि कितना निश्चय बुद्धि थे, चाहे मम्मा चाहे बाबा, कितने पेपर उनके सामने आए, कितनी बातें उनके सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मैं इंजीनियर हूं, मेरे पास पहले सारे पेपर आए हुए हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे ना करने वाला नास्तिक, यानी वो ड्रामा के रहस्य को समझता ही नहीं है, भगवान क्या देना चाह रहे हैं उसके उसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए ना कर रहा है। बाकी भले कितना भी बैठ के बाबा से योग लगाने का प्रयत्न कर ले, लेकिन जब कोई बात आती है तब तो निश्चय का पता चलता है कि इसमें निश्चय कितना है। तो ना करना माना नास्तिक, माना रहस्य को जिसने समझा नहीं। और हां करने वाला आस्तिक। तो जो स्वच्छ बुद्धि होता है, जिसके मन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होता है, कोई मूंज नहीं होती है, कोई अंदर में दुविधा नहीं चलती है, वो हर बात जो सामने आएंगी जी बाबा करके उसको स्वीकार कर लेता है। कई बार ड्रामा में कोई परिस्थिति आती है, बाबा को याद करते हैं, लेकिन उस याद में कई बच्चे बाबा को याद दिलाते, बाबा आप मदद करोगे ना, अब बाबा आप मदद करोगे ना, या बाबा आप साथ हो ना, ये क्या दर्शाता, निश्चय बुद्धि कहेंगे। मानो उसको कहीं न कहीं डाउट है कि पता नहीं बाबा नहीं है, तो अब जब नहीं है ये अंदर आ गया तो बाबा होगा फिर वहां। मानो खुद में ही निश्चय नहीं है कि बाबा मेरे साथ हर पल है, बाबा ने वायदा दिया है। फिर कई बच्चे कहते बाबा आपको इतना हमने याद किया फिर भी आप आए ही नहीं मदद करने के लिए, पहले ही जब डाउट था तो डाउट बाबा को बाबा के लिए जैसे रास्ता कट कर देता है, बाबा को आने नहीं देता है। इसीलिए तो याद दिलाते बाबा आप साथ हो ना, बाबा आप मदद करोगे ना। एक तरफ बाबा बाबा भी कर रहे हैं, लेकिन इसको निश्चय बुद्धि तो कहेंगे नहीं। ना भगवान में निश्चय है, न स्वयं में निश्चय है कि बाबा मेरे साथ है ही है। तो विजय कहां से हो सकती है? तो निश्चय का फाउंडेशन हिल गया। इसीलिए देखो भक्ति में भी कितनी सारी बातें आती है, वो रामायण के अंदर आता कि अंगद ने जब पैर रख दिया रावण के दरबार में कि कोई इस पैर को हिला के दिखाए, जय श्री राम करके उसने पैर रख दिया कि जो ये पैर को हिला देगा तो श्री राम जी युद्ध नहीं करेंगे, है ना। निश्चय देखो इतने सारे हिलाने के लिए आ गए और लास्ट में जब रावण हिलाने के लिए आया तो उसने कहा अरे मेरे चरणों में गिर के क्या मिलेगा, श्री राम के चरणों में जाकर गिर तो उद्धार हो जाएगा, है ना। और ऐसे कहते हुए जब वो वापस आया तो किसी ने उसको पूछा तुमने किस आधार से ऐसा कह दिया, और मान लो कि तेरा पैर कोई हिला देता था तो ऐसे कैसे हिला देता था, निश्चय देखो ऐसे कैसे हिला देता था। माना जो पैर मैंने श्री राम को जय करके रखा हो तो विजय है वहां पर। कहा अगर रावण हिला देता था तो कहा रावण को तो मैं पकड़ने ही नहीं देने वाला था, हिलाएगा कैसे वो, उसको पकड़ने ही नहीं देने वाला था। भावार्थ ये कि इतना निश्चय जब आ जाता है ना, ऐसे ही ये ब्राह्मण जीवन योगी जीवन के लिए भी ऐसा निश्चय चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मम्मा की बातें तो आप सबको सुनाई भी होंगी या सुनी भी होंगी, मालूम है ना मम्मा की वो बात, हलवा बनाने वाली बात मालूम है, नहीं मालूम है किसी ने नहीं सुनाई। तो मम्मा के लिए कहा जाता कि एक बार एक पार्टी आई थी मधुबन में, और लास्ट में जाने के समय जब बाबा से विदाई लेने आए तो बाबा से इतना प्यार से मिल रहे थे वो, तो मम्मा भी बाजू में बैठी थी, तो मम्मा को देखते हुए बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा को ये संकल्प आ रहा है कि बच्चों को हलवा खिलाया जाए गरम गरम। मम्मा ने कहा जी बाबा, और उठ करके वहां से गए और हलवा बनाना शुरू किया। अब यहां पार्टी विदाई ले रही है, धीरे धीरे मधुबन से निकल करके पीछे के दरवाजे से वहां बड़ के पेड़ तक पहुंच गए। किसी ने दौड़ करके आकर के सुनाया मम्मा को, मम्मा पार्टी तो जा रही है और बाबा भी गए हैं वहां पेड़ के पास में विदाई देने के लिए, रुमाल हिलाने के लिए। मम्मा फिर भी हलवा बनाती रही, पार्टी चली गई, बाबा आ गए, मम्मा हलवा बना रही है। किसी ने आके सुना दिया मम्मा को, फिर मम्मा पार्टी तो चली गई, बाबा भी आ गए, मम्मा फिर भी शांति से धैर्यता से हलवा बनाती रही। और जैसे ही हलवा तैयार हो गया तो डब्बा लेकर के जब मम्मा बाबा के पास में आए, बाबा हलवा तैयार है। बाबा ने उसी समय एक भाई को कहा, साइकिल पर जाओ, बच्चे बस स्टॉप पर तो पहुंच गए होंगे, तो वहां जाओ दे के आओ, बच्चों को डब्बा दे के आओ। जैसे ही भाई साइकिल पर लेकर के गया, बस निकल गई, निकल गई। वो साइकिल पर बेचारा बहुत तेज चला रहा है, हाथ हिला रहा है, रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने वो कांच में से देखा, ड्राइवर ने सोचा पता नहीं कौन रह गया या क्या हो गया। उसने गाड़ी रोकी, वो दौड़ करके अंदर जाकर के कहा, नहीं ये डब्बा देना था। और वो बच्चों को जब गरम गरम हलवे का डब्बा मिला, सोचो उनके हृदय की हालत कैसी होंगी उस वक्त, उनके नैनों में कितने आंसू निकल आए प्यार के। इतना प्यार करेगा कौन, है ना, इतना प्यार करेगा कौन। किसी ने बाद में मम्मा से पूछा कि मम्मा अगर हम होते थे तो हम तो छोड़ देते थे, या उसी समय जब बाबा ने कहा तो उसी समय भी तो आप बोल सकती थी कि इतनी देर में थोड़ी बाबा हलवा बनेगा। मम्मा ने क्या कहा, जो डायरेक्शन दे रहा था क्या उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि कितनी देर में हलवा बन सकता है। उसके बावजूद भी जब बाबा ने कहा तो निश्चय बुद्धि विजयंती, इसका मतलब ये बच्चों के नसीब में हलवा है। हाँ, आज की जेनरेशन शायद बाबा होते थे तो बाबा को भी कहते थे, बाबा लेकिन अब तो बस का टाइम हो गया, अब कैसे हलवा बनेगा, है ना। या बड़े अगर कोई कुछ कहते हैं तो भी छोटे हम यही कहेंगे, अब कैसे हलवा बनेगा, अब तो टाइम हो गया है, ट्रेन का टाइम हो गया है। लेकिन मम्मा ने तुरंत उठ करके हलवा बनाना शुरू किया। ये है योगी जीवन, एक संकल्प मात्र व्यर्थ नहीं चला, ये वेस्ट जाएगा। इतना हलवा अगर वो बच्चे निकल गए तो, कई बार तो बाबा ने कहा चलो बनाएं, लेकिन कितना व्यर्थ चले अंदर, क्या अभी निकल गए होंगे, टाइम हो गया बस का, अब तो चले भी गए होंगे, ये वेस्ट होगा, कौन खाएगा इतना सारा, कितने सारे संकल्प चलते हैं। आज की जेनरेशन व्यर्थ चलता है उनका, लेकिन मम्मा के मन के अंदर इतना निश्चय बुद्धि के जो डायरेक्शन दे रहा है क्या उसको पता नहीं है, और अगर वो डायरेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब इनके नसीब में है, वो कणा दाना उनके पेट में जाना है। ये निश्चय बुद्धि, ये नहीं सोचा कि बस निकल जाएंगी वेस्ट जाएगा, लेकिन ये सोचा मम्मा ने कि बस लेट हो सकती है, बाबा का मुख से निकला हुआ वचन खाली नहीं जा सकता। ये है यह निश्चय कि बाबा के मुख से निकला हुआ शब्द खाली नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। बस चाहे लेट हो जाएगी किसी कारणवश, लेकिन हलवा उनको मिलना है जरूर। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। तब मम्मा नंबर वन गई। इसी निश्चय के आधार पर जो धैर्यता और गंभीरता है ना, और उसके आधार से जो एक एक कर्म मम्मा के हुए, वो हर कर्म जैसे प्रेरणा देने वाला, हर कर्म के अंदर भी इतना निश्चय था, तब नंबर वन गई। नंबर वार बनने का कारण ही है निश्चय की कमी। कहीं न कहीं किसी प्रकार से निश्चय में कमी है, तभी नंबर वार हो जाते हैं। अगर निश्चय है बस, कौन मुझे कह रहा है कि निश्चय है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की बातें भी हम सबके सामने हैं कि बाबा के सामने जब बेगरी पाठ चला, कोई एक दो साल की तो बात नहीं थी, कितने सालों चला वो पाठ भी। और उस समय जब यज्ञ के अंदर न चार आना होता था, न अनाज का दाना होता था, भंडारी आकर के बताती थी कि बाबा आज न दाना है घर के अंदर अनाज का और न चार आना है। ब्रिजेंद्र दादी को बताती थी, ब्रिजेंद्र दादी बाबा के पास आते थे, बाबा क्या करना है। बाबा घड़ी में देखता था और कहती, बच्चे 10 बजे आना। दादी सोच में पड़ जाती थी, अभी नहीं है, 10 बजे कहां से निकालेगा बाबा। लेकिन बाबा के चेहरे पर टेंशन की रेखा नहीं। 350 को खिलाना है, घर में चार आना नहीं है, अनाज का दाना नहीं है, घर में आप लोगों को चार व्यक्ति को खिलाना हो और अनाज का दाना न हो और चार आना न हो तो कितना टेंशन चेहरे पर आ जाए, कोई कुछ बोले तो कितना गुस्सा निकल आए उस वक्त। निश्चय तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा इतने निश्चिंतता से कहते थे, बच्चे 10 बजे आना, 10 में 5 कम को, पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाती थी दादी। बाबा देखता था, अच्छा बच्चा जल्दी आ गई, बैठो। और ठीक 10 बजे पोस्टमैन आता था, कवर के अंदर कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया होते थे और बाबा उसी समय कहता था, ये ले जाओ, अनाज ले आओ, पीसो, रोटी बनाओ और छाछ और डोडा खा लेंगे। निश्चय बाबा को किसी ने बाद में पूछा, जब बेगरी पार्ट पूरा हुआ उसके बाद बाबा से पूछा, बाबा आपको कभी टेंशन नहीं हुआ कि इतने लोगों को क्या खिलाएंगे, अगर मानो वो 1000 रुपया नहीं आता था तो क्या करते थे, तो टेंशन नहीं होता था। बाबा मुस्कुराकर कहते थे, ये मेरे बच्चे थोड़ी है, उसके बच्चे हैं ना, उसको चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंता होनी चाहिए, मैं तो निमित्त हूँ, खाली संभालने वाला हूँ, बच्चे मेरे थोड़ी है, बच्चे तो उसके हैं ना, उसको चिंता होनी चाहिए या मुझे चिंता होनी चाहिए। दूसरी बार किसी ने बाबा को पूछा, लेकिन बाबा अगर नहीं आता था पैसा तो बाबा ने कहा, बच्ची सबसे पहले भोग किसको लगता है, ना? शिव बाबा को भोग लगता है ना यज्ञ में, घरों में भी। पहला भोग जब बाबा को लगता है, जिस दिन बाबा भूखा रहेगा हम बच्चे भी भूखे रहेंगे, और भगवान भक्ति में भी कभी भूखा नहीं रहा, भक्ति में भी पकवान ही खाए हैं उसने, कितना चढ़ावा चढ़ता है वहाँ। तो जब भक्ति में भूखा नहीं रहा, ये विश्वास उन लोगों का भी है, भक्तों का भी है, तो हम बच्चों को भूखा रखेगा बाबा? ये हो सकता है? जब भक्ति में ये निश्चय है कि भगवान किसी को भी दुनिया में भूखा सुलाता नहीं है, कुछ न कुछ तो उसको मिल ही जाता है, तो भक्ति में भी भूखा सुलाया नहीं तो यहाँ तो उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, मातेले बच्चे हैं, वो कैसे भूखे रहेंगे? कितना निश्चय, निश्चय का फाउंडेशन देखो कि जरा भी चिंता नहीं। यहाँ अव्यक्त बाबा हमें कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे सारा बोझ, जितनी चिंता की टोकरी है मुझे दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। हम कहने में तो कह देते हैं, बाबा ये चिंता की टोकरी आपको आज से सौंप दी, लेकिन उसके बाद योग से उठने के बाद फिर भी संकल्प चलता रहता, पता नहीं बाबा को दे तो दिया है लेकिन ये काम होगा या नहीं होगा, है ना? तो निश्चय तो नहीं कहेंगे ना इसको। इसीलिए जो काम भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर सौंप देते हैं और वो जिस तरीके से करता है, जब वापस उसको योग में से उठने के बाद ले लेते हैं, तो वो कैसे करेगा? कहेगा तुम तो लेके चले गए अपनी टोकरी, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, है ना? तो इसीलिए कहा, कहीं पर भी मन के अंदर कोई भी प्रकार की दुविधा नहीं होना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, फुल स्टॉप, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा उसके बाद, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। सौंप दिया माना सौंप दिया, उसके बाद उसका चिंतन करना, ये भी निश्चय की कमी कही जाएगी, निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे उसको भी। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है बच्चों के सामने, ऐसी परिस्थितियां आती है, लेकिन बाबा कहे चाहे उस परिस्थिति में, बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि कभी कोई सरकमस्टेंसेस ऐसे आ जाए, लेकिन उन सरकमस्टेंसेस सिचुएशंस के अंदर मान लो अक्षोणी लोग अगर एक तरफ हो और आप अकेले हो जाओ, लेकिन जैसे ही आप ये निश्चय बुद्धि बन करके कि बाबा मेरे साथ है, उसके बाद वो अक्षोणी भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी हार जाएंगे आपके सामने। निश्चय बुद्धि विजयंती उसी का नाम है कि वो अक्षोणी की ताकत भी कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी ये शक्ति है जहां मिरेक्युलस अनुभव, जैसे चमत्कारिक अनुभव जीवन के अंदर होने लगते हैं, है ना? इसी तरह ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा की हर सीन के अंदर कल्याण समाया हुआ है, मेरा अकल्याण करने की ताकत किसी में नहीं है। इस भाव में जैसे ही हम स्थित हो जाए, बुद्धि को जैसे स्थिर कर दे, उसके बाद ड्रामा की वो सीन, बाबा की एक मुरली याद आती है कि अगर अकल्याणकारी भी होगा तो वो भी परिवर्तित हो जाकर के कल्याण का रूप ले लेंगे। इसको कहते निश्चय बुद्धि कि ड्रामा की हर सीन में निश्चय। इसी तरह परिवार में निश्चय, कई बार ये तीन तो निश्चय बुद्धि बनते हैं, स्वयं में भी निश्चय होता है, चलो मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा का हूँ, ऐसा अपने आप को समझ लेते हैं, बाबा ने मुझे चुना है ना, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा में भी हम सबका निश्चय है, तभी तो बाबा के बन करके रहे हैं, बाबा का हाथ छोड़ा नहीं है, है ना? यही कहेंगे तो बाबा में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है कि चलो हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, लेकिन कभी कभी परिवार में निश्चय नहीं। अब हर बाबा का बच्चा पुरुषार्थी है और पुरुषार्थी होने के कारण कोई ना कोई कमी कमजोरी हर एक के अंदर है। अगर संपूर्ण हो जाते थे तो परिवार के मेंबर थोड़ी रहते थे, संपूर्ण हो जाते थे तो चले जाते थे एडवांस पार्टी में। यहाँ है, माना ये प्रमाण है कि कोई ना कोई कमी कमजोरी बाकी है। अब होता क्या है कि चलते चलते संगठन में तो रहना होता है, चलते चलते जब किसी की कमी कमजोरी देख ली तो लगता है इतना पुराना, ये भी अभी तक ऐसा करता है, अभी तक इसको भी इतना गुस्सा आता है, ये भी ऐसे चलता है, उसे तो हम ही अच्छे। और वहां क्या हुआ कि जैसे ही वो कमी कमजोरी देखी तो माना अपनी कमजोरी को डनलप के तक्के लगा दिए, अगर मेरे में इतना है मैं तो फिर भी उससे अच्छा हूँ, मेरे में तो थोड़ा सा ही है, उससे तो उसका तो कितना ज्यादा है मेरे से, मनम कोई हर्जा नहीं, इतना हो तो कोई हर्जा नहीं। अब डनलप के तकिए लगा दिए और उस आसन के ऊपर बैठ गए, वो कमजोरी वाले आसन पर, माना उस आसन को, कमजोरी वाले आसन को स्वीकार कर लिया, है ना। या कभी कभी कहते हैं अरे इससे तो बाहर वाले अच्छे, वो भी ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते। अब इसको परिवार में निश्चय कहेंगे, ये परिवार में निश्चय है। बाबा का हर एक बच्चा चुना हुआ रत्न है, भगवान के चुने हुए रत्न है। तो माना हर एक आत्मा अगर भगवान का चुना हुआ रत्न है तो जब हम उस आत्मा के लिए बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको तो कोई अकल नहीं है, ये तो मूर्ख है, उसमें कोई सभ्यता नहीं है, इसको बाबा में निश्चय कहेंगे, माना हमने भगवान की चॉइस पर क्या कर दिया, डाउट्स क्रिएट कर दिए कि भगवान ने भी ऐसा चुना, इससे तो बाहर वाले अच्छे। तो क्या भगवान को अकल नहीं थी, समझ नहीं थी कि बाहर वाले अच्छे और ये ऐसा है? अरे निश्चय बुद्धि, माना बाबा के परिवार का हर बच्चा जैसा भी है, भगवान का चुना हुआ रत्न है, उस रूप में उसको देखते हुए स्वीकार करना, ये है निश्चय बुद्धि। उसके प्रति एक व्यर्थ संकल्प तक न चलाना, यह है निश्चय बुद्धि, नहीं तो अपना आसन हिलने वाला है, क्योंकि एक टांग छोटी हो गई ना, बाकी तीन टांग तो ठीक है, लेकिन चौथी वो नहीं, पृथ्वी के लिए क्या कहते हैं, पृथ्वी के लिए क्या कहते हैं, जब भूकंप आता है तो पहले के जमाने के लोग क्या कहते थे कि वो थोड़ी करवट बदली तो एक टांग जो छोटी है तो हिलती है, इसीलिए भूकंप आता है, ऐसे मान्यता होती थी। भावार्थ ये कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन ये चारों पहियों के ऊपर है, और अगर तीन पहिए भी ठीक है लेकिन एक पहिया भी अगर निश्चय बुद्धि वाले की कमी है तो वो तीनों को हिलाने के लिए निमित्त बन जाए। माना हमने भगवान की चॉइस पर एक तो डाउट किया, भगवान ने चुना हुआ है तो हम उसमें गलती निकालने वाले कौन होते हैं? अगर उसने पसंद कर लिया उस आत्मा को, इतनी कमी कमजोरी होने के बावजूद भी, और वो आत्मा भी अपनी कमी कमजोरी जानते हुए भी उसको एक हिम्मत है, आशा है कि मैं विजयी हो जाऊंगा, इसलिए पुरुषार्थ का मार्ग उसने छोड़ा नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ा नहीं है, उम्मीद है ना कहीं न कहीं कि एक दिन तो मैं ये कमी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लूंगा, चाहे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल के बाद भी उसको एक उम्मीद है कि मेरी ये कमी कमजोरी पर विनाश के पहले मैं विजयी हो जाऊंगा, इसलिए तो चल रहा है। और उसको मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ कि ये व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, उसे तो न चलता तो अच्छा होता। तो बाबा को पता नहीं था, अरे उसकी हिम्मत को दाद दो के इतने सालों के बाद भी उसने उम्मीद अपने में कम नहीं होने दिया और फिर भी पुरुषार्थ कर रहा है, लंगड़ाते हुए भी चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है, तो शाबाशी नहीं देनी चाहिए या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? है ही ऐसा, छोड़ दो उसको, जाने दो उसको, है ना, कोई काम का ही नहीं है। अब ये कहना ये निश्चय बुद्धि तो नहीं है ना। और ऐसे कहते हुए फिर हम जब योग में बैठेंगे हमारा योग लगेगा ना? किसी को मैंने रिजेक्ट कर दिया, भगवान की चॉइस पर मैंने डाउट्स पैदा कर दिए, उसके बाद मेरा उस भगवान से योग लगेगा? योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। मन में वही विचार घूमते रहेंगे जितना निश्चय बुद्धि होकर के बैठेंगे। इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते आत्मनिश्चय होकर के बैठो, आत्मनिश्चय करो पहले। तो सबसे पहले योग में बैठते समय अपने निश्चय के फाउंडेशन को देख लो कि सारा दिन मैंने कोई भी प्रकार के डाउट्स तो क्रिएट नहीं किए हैं, क्योंकि वो डाउट्स क्रिएट करना माना भगवान पर भी डाउट है, वो एक आत्मा पर या खुद पर या ड्रामा पर डाउट नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति भी मेरा डाउट है। इसलिए योगी जीवन का मुख्य आधार अगर देखा जाए कि फुल स्टॉप, किसी के प्रति कोई डाउट्स के संकल्प ना हो, फुल स्टॉप। बाबा इसीलिए हमेशा कहते बच्चे 3 बिंदी लगा दो तो चौथी बिंदी अपने आप लग जाएंगी, परिवार के निश्चय में, माना वहां व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं, या बार बार उस आत्मा को देखते हुए ये नहीं आएगा अरे भगवान ने भी ऐसी चॉइस किया, अरे उसमें कुछ तो खूबी है, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रही, इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक पर्दा है कि मैं अपने आप को नहीं देख रही हूँ और इसीलिए उसकी कमी कमजोरी को देख रही हूँ, तो ये पर्दा है, तो ये भी तो अस्वच्छता हुई, बुद्धि की अस्वच्छता हुई, तो निश्चय के फाउंडेशन तो हिलेगा ना। बाबा ने इसीलिए कहा है कि बच्चे इस यज्ञ के अंदर महान निश्चय को हिलाने वाले 3 पेपर आएंगे, जिसमें 2 पेपर तो आ गए, अभी तीसरा पेपर आना है, है ना। पहला पेपर कौन सा था, कौन सा पेपर था पता है, पहला पेपर कौन सा था जिसमें कईयों के निश्चय का फाउंडेशन हिल गया था, कौन सा, कौन सा पेपर? बेगरी पार्ट वाला पेपर। पहला पेपर जब बेगरी पार्ट का पेपर आया, ये भी ड्रामा के अंदर इतना कल्याणकारी था क्योंकि उसी से पता चला कितने मातेले कितने सौतेले, है ना, कितने बाबा के पक्के बच्चे हैं और कितने बाबा के कच्चे बच्चे हैं। तो जो कच्चे थे बाबा कहते उसको वर्षा थोड़ी दूंगा, उसको वर्षा थोड़ी देंगा बाबा। तो उस समय बेगरी पार्ट जैसे चला तो पहला ब्राह्मणों का झाड़ हिला, और उस समय कई ब्राह्मण जो कच्चे कच्चे थे वो क्या हुआ, गिर गए, गिर कर चले गए दुनिया के अंदर। दूसरा पेपर कब आया, दूसरी बार ब्राह्मणों का झाड़ कब हिला, कब हिला पता है? 76 महिला है ना, क्योंकि उस समय कहा गया था कि 100 साल का संगम युग। अभी भी जैसे मुरलियों में कई बार सुनते हैं 100 साल का संगम युग, तो सोचा कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, तो ब्रह्मा बाबा को 100 साल हुआ 1976 में, 69 में 93 इयर्स के थे ना बाबा, तो 76 में 100 साल हुए। तो इसीलिए बाबा ने तो नहीं कहा था, लेकिन ब्राह्मण जो है ना अपनी समझदारी से कैलकुलेशन लगाते रहते कि 100 साल का संगम युग, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा को 100 साल होगा तो विनाश हो जाएगा। और इसीलिए उस समय ये कैलकुलेशन, आज भी कई लोग कैलकुलेशन अपनी अपनी रीति से करते रहते हैं, है ना, और ये कैलकुलेशन में कहीं आ भी जाते हैं और फिर नहीं होता है कुछ भी, तो कहते पता नहीं क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसी तरह जब ये कैलकुलेशन लगा दिया और फिर चारों ओर के भाई 100 साल का संगम युग, इसलिए 76 तक तो विनाश हो ही जाना है, दुनिया भर का विनाश हो जाना है और सतयुग आ जाएगा। और बाबा साक्षी होकर के मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे में बाबा ने कभी कोई मुरली में नहीं कहा कि 76 में विनाश होगा, लेकिन क्योंकि ये आवाज इस तरह से फैल गया था यज्ञ के अंदर कि कई बाबा के बच्चे इसीलिए बने कि शायद बाबा के बन जाएंगे तो बच जाएंगे, इस भाव से बाबा का हाथ पकड़ लिया कि शायद हम भगवान का हाथ पकड़ लेंगे तो बच जाएंगे। और इसीलिए आते ही बाबा के ऊपर जैसे तन मन धन वारी जाऊं सब कुछ, और उसके बाद जब 76 में नहीं हुआ तो उन लोगों की हालत क्या हुई होंगी, आप सोचो। क्या सोचा, ये लोग भी तो झूठ बोलते हैं क्या, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने तो किसी मुरली में कहा ही नहीं था, ये तो ब्राह्मणों का कैलकुलेशन था। और ब्राह्मण अपने दिमाग लगाता रहता है, कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं कैलकुलेशन में, है ना। और इसलिए एक बार बाबा ने जब मुरली में कहा कि बच्चे 5000 साल का कितना साल होता है, कितना मास होता है, कितना मिनट होता है, कितनी सेकंड होती है, तो ऐसे ही बाबा मुरली में सुना दिया। और उसके बाद एक भाई ने दिन रात बैठ के कैलकुलेशन किया कि 5000 साल का मास कितना, मिनट कितनी, सेकंड कितनी, सारा हिसाब निकाल करके, पता नहीं कितना दिन लगा उसको हिसाब निकाल करके बाबा के सामने ले आया। बाबा ने क्या कहा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे कई प्रकार से कैलकुलेशन करते रहते हैं अपनी रीति से। तो इसी तरह जब 76 में नहीं हुआ तो कितनी आत्माओं ने सोचा भगवान भी झूठ बोलता है, 76 में विनाश होगा कहा, कुछ नहीं हुआ, माना इनका पूरा ज्ञान, माना पूरे ज्ञान के ऊपर ही डाउट क्रिएट कर दिया, भगवान पर डाउट क्रिएट कर दिया। और वो क्या हुआ, फिर माया के मुरीद बन गए, चले गए, काफी लोग उस समय छोड़ छाड़ के चले गए। तो दूसरी बार झाड़ हिला, निश्चय कहीं फाउंडेशन हिला था। और बाबा कहे अंतिम समय के पहले एक बार फिर झाड़ हिलेगा, उसमें काफी जो कच्चे हैं ऐसे, जो पक्के रीति से ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, एक बाबा में निश्चय बुद्धि नहीं है, तो लास्ट में अंतिम विनाश के पहले फिर से एक झाड़ हिलेगा। इसलिए अभी से ही अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन कहीं भी कमजोर रहा तो वहां से गिरने की संभावना है। माना कितना सालों का पुरुषार्थ होगा, लेकिन अगर निश्चय ही हिल गया किसी भी बात को लेकर के, तो क्या होगा, टूट पड़ेंगे और अंतिम विजयी नहीं बन पाएंगे। तो बाबा जो कहते हैं, बाबा कोई बाबा पक्का सौदागर है, विश्व की बादशाही जो देता है, कहीं भी थोड़ी भी संशय बुद्धि होगी तो नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि वही विजय। और इसीलिए बाबा की मुरली में भी सुनाऊंगा आपने, जहां जीत वहां जन्म। जो निश्चय बुद्धि होकर के विजयी हो जाते हैं, जीत प्राप्त कर लेते हैं, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर जीत, आंतरिक प्रकृति पर जीत, बाह्य प्रकृति पर जीत, तो जहां जीत वहां जन्म, वही उस स्वर्ग में जन्म लेने के अधिकारी है। तो जीत का आधार है निश्चय। बिना निश्चय के विजयी नहीं और बिना जीत के जन्म नहीं। इसलिए ये झाड़ पुनः हिलेगा। इसलिए अभी से ही अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का कर लेना है कि किसी भी तरह से हमारा फाउंडेशन क्या हिलना नहीं चाहिए। हुआ ही पड़ा है ही, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उसने ऐसा कहा तो, पता नहीं, ये जिसको भी आदत है पता नहीं पता नहीं पता नहीं, बाबा कहते उसका पत्ता कट जाता है। ये निश्चय बुद्धि नहीं है। तो पता नहीं वाली लैंग्वेज को अभी चेंज करो कि हुआ ही पड़ा है, हम विजयी हुए थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, हमेशा होंगे। तो इस तरह की जिसकी एक दृढ़ता है अंदर में, पक्का विश्वास है, ये निश्चय बुद्धि है ना। किसी ने कुछ कहा, उसकी बातों के प्रभाव में आ जाना और बाबा के ऊपर संशय पैदा कर लेना, इसको तो निश्चय नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए इस योगी जीवन का पूर्ण आधार है निश्चय का फाउंडेशन चेक करना, क्योंकि अंतिम समय होगी छोटी सी कमजोरी, लेकिन वही कमजोरी माया के आने का द्वार बन करके हमारे अंदर का जो फाउंडेशन है उसको खोखला करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए चाहे कैसी भी सरकमस्टेंसेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बातें हो, मुझे उन बातों में जाना नहीं, मुझे उन परिस्थितियों के प्रभाव में आना नहीं, लेकिन एक ही दृढ़ता के आधार से हम बाबा के हाथ को ऐसा पकड़ के रखें जो कोई उसको छुड़ा ना सके, माया उसको छुड़ा ना सके। माया माना क्या है, कमजोरी है ना, तो कमजोरी हमारा हाथ बाबा से छुड़ाना। इसीलिए कमजोरी के ऊपर वर्क करना शुरू करो, उसको हमेशा के लिए खत्म करने का भी पुरुषार्थ करना है। छोटी सी कमजोरी भी छोटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन
अंत में झाड़ भले हिले लेकिन हम ना हिले, तो बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही एक्यूरेटली आपने सारा स्पष्टीकरण किया कि कैसे हमारे हर प्रकार के निश्चय को हमें 100% तक ले जाना है, न केवल 100% लेकिन उसको जितना ज्यादा कर सकें। कोई अगर उसे हिलाने की कोशिश करे, हम उसे निश्चय बुद्धि बना दें लेकिन हमें वो संशय बुद्धि बना ना पाए, ऐसा पुरुषार्थ करने के कुछ अनेक युक्तियां आपने बताई, तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा बहन। ओम शांति।
अब तेरे बिन